द्वितीया पादा स्वप्न अवस्था में जीव द्वारा लोक और परलोक दोनों के देखने की बात श्रुति कहती है। बृहदारण्यक में स्वप्न में न तो रथ होते हैं और न घोड़े आदि, परंतु जीव आत्मा रथ घोड़े आदि और उनके मार्ग बना देता है। इसी प्रकार ताल बावड़ी नदी आदि बनाने की बात कही गई है। इससे सिद्ध होता है कि जागृत के समान स्वप्न में भी जीव रचना कार्य करता है। जागृत अवस्था में जिन साधन सामानों की उसे आवश्यकता होती है, स्वप्न में उनकी भी आवश्यकता नहीं होती। एक शाखा वाले विद्वान जीव को काम वासना आदि का निर्माण करने वाला मानते हैं। कठ उपनिषद में जाहेश सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषो निर्माण जय जीव सबके सो जाने पर पुत्रादि की कामनाओं का निर्माण करता हुआ जागता रहता है। जीवात्मा स्वप्न में जो रचना करता अथवा देखता सुनता है, उसमें सुताए पित न होने से उस वस्तु का दृश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न केवल संकल्पों की अव्यक्त मात्र है। इसलिए उसे केवल माया कहना उचित ही प्रतीत होता है। प्रश्न श्रुति के अनुसार जागते में सुनी देखी अनुकूल की हुई वस्तु स्वप्न में विचित्र ढंग से दिखाई देती है। वहां न देखी सुनी और अथवा अनुभव न की हुई वस्तुओं को भी वह देखता है। इससे भी स्वप्न की सृष्टि का माया मात्र होना ही सिद्ध होता है। उपरोक्त सूत्र में जीव को कामेशों का निर्माता माना गया है। ये मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि वहां स्वप्न अवस्था का वर्णन नहीं है। भविष्य में होने वाले शुभ या अशुभ फल की सूचना भी स्वप्न से मिल जाती है, क्योंकि श्रुति स्वप्न को भविष्य सूचक बताती है और स्वप्न के विषय को जानने वाले विद्वान भी ऐसा कहते हैं। छंदोग में जब काम कर्म का अनुष्ठाता स्वप्न में सुभागवती स्त्री को देखे, तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ जान ले। कौशिक की ब्राह्मण में अथ स्वप्ने पुरुषम कृष्णम कृष्ण दंतम पश्यति सायनम अंतिति, अर्थात जो स्वप्न में काले रंग के और काले दांत वाले पुरुष को देखता है, वह उसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न विद्या के विद्वान स्वप्न में हाथी पर सवार होने को शुभ और गधे पर सवार होने को अशुभ मानते हैं। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्यों का शुभ शुभ सूचक होना सिद्ध होता है। जीवात्मा ब्रह्म का अंशभूत होने से उसी के गुणों में सुसंगत है, परंतु जीव अपने कर्मानुसार और इस संसार को माया के चक्कर में रहकर उन्हें भूला रहता है और उसके वे गुण छिपे रहते हैं। जागे जीव आत्मा उस कारण का निरंतर ध्यान आदि सत्कर्म करता है, तब उसमें छिपे हुए विगुण पुनः प्रकट हो जाते हैं। श्वेताश्वेत में अनुसार उन गुणों का प्राकट ईश्वर का ध्यान करने से संभव है। जीवात्मा देह के साथ जब अपनी एकता मान लेता है, तब वह परमात्म तत्वों को भूल जाता है। इसी कारण उसके छिपे हुए गुण प्रकट नहीं हो पाते। जब तक जीव इस माया से निवृत्त नहीं होता, तब तक उसके गुण छिपे ही रहते हैं। इससे उसे बार बार कर्म बंधन में पड़कर जीवन मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। ऊपर स्वप्न अवस्था का जो वर्णन आया है, उसमें जीवात्मा के जागने, सोने, स्वप्न अवस्था में रहने आदि की बात बताई गई है। परंतु जब वह पुरीतति नाड़ी से आत्मा में पहुंचता है, तब स्वप्न के दृश्य उसे दिखाई नहीं देते। छंदोग में जब सोते हुए मैं किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता, तब प्रसन्न होकर नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है, इस प्रकार कहा है। और स्वप्न के अभाव में सत्य के साथ समाद होना भी छंदोग में बताया है। सता सत्ता सम तदा सुपन्नो भवति, सुषुप्ति के स्वंग में कहा है कि जब जीव अपने स्वरूप भूतात्मा में निमग्न होता है, तब हृत्पिंड की गति से नाड़ियों गतिमान होती है, यही सुषुप्ति है। सुषुप्ति में जीवात्मा का हृदय में स्थित रहना कहा गया है, और जो वस्तु जिसमें लीन होती है वही से उसका प्राकट है, प्राकट हो उठता है, उसका प्राकट है। इस न्याय से आत्मा रूप हृदय में लय हुआ जीव हृदय स्थान से ही जाग उठता है। जो सोता है वही जागेगा। आत्मा स्वरूप में स्थित होने के पश्चात प्रबोध काल में किसी दूसरे के जागने का प्रश्न भी नहीं उठता। सोवे कोई और जागे कोई, ऐसे तो सब अवस्था ही विपरीत हो जाएगी। निम्न चार कारणों से ये बात सिद्ध भी होती है। पहला कर्म, सोने से पहले जिन कर्मों को उसे करना था, जागने पर उन्हीं कर्मों को पूर्ण करना शेष होने से। दूजा, अनुस्मृति, सोने से पहले की बातों के याद रखने से कि मैंने सोने से पहले यह देखा, सुना या किया था। तीजा, शब्द, शब्द प्रमाण से अर्थात श्रुतियों में जो सोता है उसी के जागने की बात कही है। छंदोग के अनुसार जो जीव सोने से पहले व्याघ्र, सिंह, पतंग, मच्छर आदि था, वह जागने पर वैसा ही रहता है। और विधि, श्रुतियों में मोक्ष के लिए कर्म करने की जो आज्ञा दी है उसका पालन भी जो सोता है उसी के जागने से होगा, क्योंकि सो जाने से ही मुक्ति नहीं हो सकती, उसके लिए वेद विधि से कर्म करना आवश्यक है। मरने से पहले जीव को तीन अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कही गई है। मोह अवस्था तो कभी किसी को ही प्राप्त होती है। इसके लक्षण सुषुप्ति के से ही होते हैं। इसमें अधि सुषुप्ति और अधि जागृत जैसी अवस्था होती है उस समय प्रसन्न मुख उन्मीलन नेत्र परंतु चेहरा विवरण दिखाई देने से उसे सोता जागता कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए मुग्धावस्था को अर्धशुद्धि कहा गया है। पारब्रह्म को श्रुतियों ने दो स्वरूप वाला कहा है। श्वेताचार्य ने उसे निर्विशेष कहा है और बकेंद्रिक गुणों से सपन्न भी बताया है। अनुरणियान महतो महियात आत्मा आत्मस्या जंतो निर्हितो गुहा। इस कंठ श्रुति के अनुसार इस जीव के हृदय गुहा में स्थित ब्रह्म छोटे से छोटा और महान से महान है। इस प्रकार पारमन दोनों ही लक्षणों से युक्त है। यह कहना युक्ति संगत ही है। यह प्राणियों के हृदय स्थान में रह कर भी उनके दोषों से निर्लिप्त रहता है और परस्पर बोधि लक्षणों का उसे रहना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति की बात नहीं। यदि यह कहो के लक्षण वाला कहने से यहाँ ब्रह्म का निरर्थक है। एक और से सर्वगुण सुपन्न कहा है तो दूसरी ओर अपर ब्रह्म कहा है। एक ओर उसके निर्विशेष रूप का प्रतिपादन किया है, दूसरी ओर उसे ब्रह्म भी कहा गया है। ये दोनों लक्षण एक में ना हो सकने से ब्रह्म का उभयलिंगत्व सिद्ध नहीं होता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतियों ने उसके लक्षणों को मान्यता दी है। किसी किसी श्रुति ने वैसा नहीं कहा है, परंतु अधिकांश श्रुतियों तथा उस ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का प्रतिपादन करती है। श्वेताचार्य में एक ही ब्रह्म को सूरज के समान स्वयं प्रकाश और मायातीत कहा है। श्वेताचार्य में ही उसके सब स्थानों पर मुख सिर आदि अंगों का होना कहा है। इस प्रकार अनेक स्थलों पर श्रुतियों ने ब्रह्म को दोनों लक्षण वाला प्रतिपादित किया है। एक शाखा वाले विद्वान तो विशेष रूप से इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तैतृय उपनिषद में उसी ब्रह्म को सत ज्ञान और अनंत कहा है। उसी के पैसे वायु की गति सूर्योदय और अग्नि इंद्र मृत्यु आदि का अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होना बताया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म को दो लक्षणों से सपन मानना युक्ति संगत ही है। जिस प्रकार श्रुतियों ब्रह्म को लक्षण रहित कहा गया है, उसी प्रकार श्रुतियों उसके रूप को भी प्रमुखता देती है। एको देवा सर्वभूतेषु इत्यादि श्वेताचार्य श्रुति के अनुसार वही एक ब्रह्म दोनों रूपों में स्पन्न है। इसे ब्रह्म का निर्गुणत्व और सगुणत्व दोनों ही सिद्ध होते हैं। जैसे ज्योति के रूप माने गए हैं प्रकट और छिपा हुआ, वैसे ही ब्रह्म के दोनों रूपों को मानना भी व्यर्थ नहीं है। ब्रह्म को उपास्य मानने के लिए उसके दोनों रूपों को समान मानना आवश्यक है। किसी को प्रमुखता देना और किसी को गौण मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिसको गुण मानोगे उस रूप में निष्ठा का भाव कम रहेगा। ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उसके सगुण रूप को स्वीकार करना अनुचित नहीं, क्योंकि मन में किसी रूप को धारण किए बिना ध्यान करना संभव नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म के दोनों रूपों का मानना सार्थक है और मुनियों भी इसका समर्थन और श्रुतियों भी इसका समर्थन करती है। परमात्मा के अनेक रूपों का श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णन होने से उसके सगुण रूप को अस्वीकार नहीं कर सकते। गोपाल तापनी में सा पुंडरीक नैनम मेधावं वैदुतांब्रम दिभुजम मौन मुद्राव्यम बानमालन मीश्वरम सापुंडरीक नेत्र मेघ वरण बिजली रूप वस्त्रधारी दो पूजा वाले मौन मुद्राजूत और वनमालाधारी ईश्वर कहा है। इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण विभिन्न श्रुति स्मृतियों में पड़े पड़े हैं, जैसे ब्रह्म का दोनों लक्षण युक्त होना सिद्ध होता है। जल से पूर्ण सूर्य आदि का प्रतिबिंब पड़ने से वह एक से अनेक रूप हो जाता है। उसी के उदाहरण से यह समझाया गया कि सर्वव्यापक ब्रह्म सुगुण निर्गुण के भेद से पृथक पृथक नहीं किंतु एक ही है। सूर्य चंद्रमा आदि में स्वभाव गुण है, उसी प्रकार ब्रह्म के है। सूर्य चंद्रमा आदि में स्वभाव गुण है, उसी प्रकार ब्रह्म के सर्वव्यापकता सात संकल्पता सर्वागता आदि गुण स्वाभाविक है। ऊपर जो प्रतिबिंब का वर्णन हुआ है उसमें यही मानना चाहिए कि अभिन्न वस्तु में कभी बिंब प्रतिबिंब का भाव नहीं होता है। जो परमात्मा विभाग रहित अर्थात अविभक्त है, वह निर्गुण होते हुए भी सब प्राणियों में विभक्त के समान निवास करता है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। अमर ऊपर जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा अधिष्ठान देकर ईश्वर के अनेक रूप होने की बात कही गई है। परंतु चंद्रमा की वह उपमा पूरी धर्म ब्रह्म पर नहीं करती, क्योंकि जल में दिखाई देने वाला चंद्रमा उसकी छाया मात्र ही है। उसके समान सब के हृदय में ब्रह्म की छाया नहीं रहती, किंतु ब्रह्म स्वयं ही स्थित रहता है। इस उपमा से यही समझना चाहिए कि चंद्रमा अपने प्रतिबिंब द्वारा एक से अनेक दिखाई देता है, किंतु ब्रह्म तो सभी जीवात्माओं के हृदय में एक रूप से स्थित रहता है, अनेक रूप दिखाई देता है। उपमा और उपमेय दोनों को एकता दोनों की एकता हो जा हो तो वह उपमा नहीं कही जा सकती। उसी प्रकार चंद्रमा और उसके प्रतिबिंब से ब्रह्म ब्रह्म और उसके प्रतिबिंब की भी एकता नहीं हो सकती। जहां चंद्रमा उपमात्र है उसमें गुणों की न्यूनता होना संभव ही है, किंतु ब्रह्म और उसके प्रतिबिंब में समानता है, वह स्वयं ही सब प्राणियों में स्थित है। यदि शंका करे कि शरीर में स्थित रहने के कारण वह उसके अनुपात से घटता बढ़ता भी होगा तो परमात्मा शरीर के किसी विकार में लिपत नहीं होता, इसलिए शरीर में कटने मरने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्म सब में समान भाव से स्थित रहता है। सूरज और चंद्रमा के प्रतिबिंबों के पानी में रहने पर भी पानी के गुण उन्हें व्यक्त नहीं करते। अथवा आकाश काले या शिकोरे में रह कर भी उसके गुणों से संबंध नहीं रहता। इसी प्रकार ब्रह्म भी शरीरों में रहकर उनके गुणों से संबंध नहीं रखता, इसलिए उसे निर्विकार कहा गया है। इस प्रकार के बहुत से वर्णन श्रुतियों में मिलते हैं जिनसे ब्रह्म का निर्लिप्त सिद्ध होता है। पूर्व श्रुति ने ब्रह्म के मूर्त अमूर्त दो रूप कहे हैं। प्रतिच्छेद के बाद भी ब्रह्म के सात नाम रूपों का वर्णन किया गया है। अपरिमेय ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए नेति नेति भाव का प्रयोग हुआ है। इति न अर्थात सपार्ता निरूपण के बाद रूप की एकता का निषेध करने के लिए नेति शब्द कहा गया। इसका अर्थ हुआ कि नेति शब्द का प्रयोग परमात्मा के सुगुणत्व का निषेध करने के लिए नहीं, यथा अर्थात वह इतना ही है। इस सीमित भाव के निषेध रूप में हुआ। इस शब्द के द्वारा ब्रह्म की असीमता सिद्ध होती है। श्रुति ने ब्रह्म को इंद्रियों द्वारा आग्रहज कहा है। मुंडक उपनिषद न चक्षुषा गृह्यते न पि वाचा अथवा तप और कर्म से भी वह ब्रह्म ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ब्रह्म के अव्यक्त का प्रतिपादन हुआ। अब मुंडक उपनिषद के ही में जदा पश्यते और रुकम वर्णन कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनियम से जीवात्मा द्वारा सबके शासक ब्रह्म के भी जन्मदाता जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश रूप परम पुरुष ब्रह्म का साकार कर लेना कहा है। इससे रुकम वर्णन से उनका नाम रूपक प्रतिपादित होता है और पश्यते से भी उनके सार्थक की सिद्धि होती है। जैसे ब्रह्म का अव्यक्त होना जहां प्रतिपादन किया गया है, वैसे ही उसके प्रकट रूप का प्रतिपादन भी श्रुति परमाणु तथा युक्तियों से हो जाता है। वेद तक दान यज्ञ द्वारा मुझे नहीं जाना जा सकता, किंतु अनंत भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इन प्रमाणों से ब्रह्म का अवगुणत्व और निर्गुणत्व दोनों ही सिद्ध होता है। जैसे पूर्व सूत्र में ब्रह्म का जीवात्मा से अपन होना कहा गया है और उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, वैसे ही जहां ब्रह्म और प्रकृति का भिन्न होने की मान्यता ठीक है। जगत की उत्पत्ति से पहले एकमात्र ब्रह्म ही था। इस श्रुति वाक में अन्न का निषेधात्मक पक्ष सिद्ध होता है। इससे प्रकृति का ब्रह्म में विलीनीकरण होने से प्रकृति और पुरुष की अभिन्नता का ही प्रतिपादन होता है। जड़ चेतनात्मक जगत की कारण भूता जिन परा और अपरा प्रकृतियों का वर्णन देखा जाता है, उन प्रकृतियों से ब्रह्म को परम श्रेष्ठ और विलक्षण माना गया है। श्रुति में ब्रह्म का श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के चार कारण माने गए हैं। पहला सेतु, दूजा अनुमान, तीजा संबंध और चौथा भेद। सेतु का वर्णन छंदोग में आत या आत्मा सा सेतु बुधिरती से कार ब्रह्म को सब का धारण करने वाला सेतु बताया है। अनुमान के विषय में पादोस्या सर्वभूतानि त्रिपादस्या या मृतुम दिवि से सब प्राणी विषय में सब प्राणी ब्रह्म के एक पाद में और शेष तीन पाद अमृत रूप दिव्य लोक में कहे हैं। अनुमान का अर्थ सबसे बड़ा परिमाण है और इस श्रुति में भी ब्रह्म की महानता का प्रतिपादन किया है। स्वांग के विषय में ईश्वर के भी ईश्वर, देवताओं के भी देवता आदि श्रुति भाग मिलते हैं, जिनमें स्वामी सेवक भाव के प्रतिपादन द्वारा स्वांग को सिद्ध किया है। चौथे का कारण बनाकर जीवात्मा को साधक और ब्रह्म को साध प्रतिपादित कर इनसे भेद होना सिद्ध किया है। इन कारणों से जय मानता सर्वथा ज्योति संगत है। श्रुतियों ने ब्रह्म को जीवात्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार का मानना है। एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति अर्थात जय ब्रह्म सब का ईश्वर भूतों का अधिपति है, अथवा एषता आत्मंत आत्मंत से उसका अंतर्जामी होना कहा है। भेद प्रतिपादन करने वाली ऐसी बहुत श्रुतियां हैं तथा भेद की प्रतिपादक श्रुतियां भी उपलब्ध है, जैसे अहम आत्मा ब्रह्म अर्थात जय आत्मा ब्रह्म है, अथवा तत्त्वमसि वह ब्रह्म तू ही है। इस प्रकार दोनों पक्षों का प्रतिपादन करते हुए किसी को विशेष और किसी को अविशेष नहीं कहा है। ब्रह्म के दोनों रूपों का श्रुतियों में समान भाव से वर्णन किया है, इससे दोनों पक्षों की मानता पूर्णता सिद्ध होती है। जैसे ब्रह्म तत्व का पूर्ण विवेचन करने से के लिए चार पादों की कल्पना की गई है, वैसे ही भेद का भेदभाव को मानते हुए उपासना का उद्देश्य उस ब्रह्म का बोध कराने के उद्देश्य से ही किया गया है, चाहे भेद से अथवा भेद से किसी प्रकार भी उपासना की जाए उसका फल एक प्रकार का ही है। वे दोनों प्रकार की उपासना एक ब्रह्म की ही उपासना माननी चाहिए। जैसे सभी प्रकाशमान पदार्थ समान तत्व वाले होने के होने से एक ही हैं, परंतु उनमें सूर्य चंद्र अग्नि ग्रह नक्षत्र तारे आदि आदि के रूप और स्थान में होने से उनमें विभिन्नता दिखाई देती है, वैसे ही जड़ चेतन रूप आत्मिक सभी जीव अपने फल प्राप्ति रूप से अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं, वैसे भी ब्रह्म की प्रकृतियों के संबंध से एक प्रकार के ही हैं। श्रुति में प्रथम एकमात्र ब्रह्म का अस्तित्व बताकर फिर उसे जगत का कारण रूप कहा है, फिर ब्रह्म को अपने से भिन्न कहकर उसकी उपासना का उपदेश किया है, फिर उसे ही उस विश्व का सृष्टा आदि कहकर जीव के कर्म फल रूप बंधन मोक्ष का बधान करता बताया है, तब जीवों की उत्पत्ति का निषेध कर उनके कर्म संस्कारों को परंपरागत कहा है। इस सब पर विचार करने से जीव मात्र का अपेंतव होने होते हुए भी कर्म फल आदि की विभिन्नता के कारण पृथक है। ब्रह्म में विलीन होने और उसी में प्रकट होने के है ही कारण ब्रह्म के ही अंशभूत हैं और ब्रह्म उनका नियामक होने से तो भिन्न ही है, साथ ही जीव से विशिष्ट और विलक्षण होने के कारण भी उसका पिंतव सिद्ध होता है। ब्रह्म से भिन्न अन्य किसी की सत्ता को श्रुतियों ने स्वीकार नहीं किया है, यह बात ऊपर अनेक बार कही जा चुकी है। जब अन्न का असत्व है ही नहीं तो एकमात्र ब्रह्म का ही विभिन्न रूपों से प्रकट होना स्वीकार करने में ही विरोध क्यों होना चाहिए, इससे उपरोक्त मानता भी सिद्ध होती है। ब्रह्म के सर्वव्यापक होने के अनेक प्रमाण श्रुतियों में मिलते हैं। ते निर्दम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, इस पुरुष से सब पूर्ण है, अथवा ब्रह्म वेदम सर्वम, जय सब ब्रह्म ही है आदि प्रमाणों से ब्रह्म की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन होता है। सब जीव परमात्मा के आश्रय में ही अपने कर्म फल भोग को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञाता एवं सर्वशक्तिमान इससे होने से ब्रह्म ही जय समर्थ रखता है। जड़ प्रकृति अथवा जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है, इसे कर्म भोग की व्यवस्था करने वाला ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जिस कर्म से फल की उत्पत्ति होती है वह कर्म ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, धर्म कर्म का ही पर्याय है। जैमिनी आचार्य के मत में कर्म ही फल का देने वाला है, इस प्रकार भी श्रेष्ठ कर्म से शुभ फल की प्राप्ति और निष्कृष्ट कर्म से अशुभ फल की प्राप्ति होना सिद्ध होता है। तो किंतु बादरायण आचार्य बदरायण पूर्वम पहले कहे अनुसार ब्रह्म को ही कर्म फल का देने वाला कहते हैं, क्योंकि हेतु व उपदेश आत श्रुतियों भी उसे कारण रूप कहती है। आचार्य बदरायण जैमिनी के मत से सहमत नहीं है और वे कर्म को निमित्त मात्र ही मानते हैं, क्योंकि कर्म तो जड़ और अनित है और जो जड़ जहां अनित है वह फल की व्यवस्था कैसे कर सकता है, ऐसे ब्रह्म ही सबके कर्म फल का देने वाला होता है। यही बात सब श्रुतियों कहती हुई ब्रह्म को ही सब का कारण रूप बताती है।